पृष्ठ संख्या 85। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर ने 1919 से लगातार राजनैतिक दबाव न खड़ा किया होता तो शायद अछूत जातियों को धारा सभाओं में प्रतिनिधित्व की बात स्वीकार्य नहीं होती। हाँ, कांग्रेस पार्टी भी जो राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में थी, वह वयस्क मताधिकार को ही दलितों की समस्या के समाधान को एकमात्र रास्ता मानती थी और धारा सभाओं में कतिपय दलित नेताओं के मनोनयन को ही इन वर्गों के विकास का रास्ता स्वीकार करती थी। गांधी जी के जीवन की रक्षा हो, इस पर डॉक्टर अंबेडकर अंतिम रूप से सहमत थे, क्योंकि वे भी समझते थे कि यदि किन्हीं परिस्थितियों में उक्त आमरण अनशन के कारण गांधी का जीवन चला गया तो देश में भयंकर सवर्ण दलित दंगे होते और दोनों की खाई को खत्म करने का जो ऐतिहासिक दायित्व अंबेडकर अपने कंधों पर लिए थे, वह बहुत दिनों तक पूरा नहीं होने वाला था। फिर भी उस दौरान वह अपनी मांगों पर डटे रहे। इसका नतीजा हुआ कि देश की विभिन्न धारा सभाओं में कैबिनेट ब्रिटिश ने दलितों को 71 सीटें दी थीं। अंबेडकर साहब का आग्रह था कि 197 सीटें दी जाएं। अंततः 147 से 48 सीटें मान्य हुई तो उनकी भी अपेक्षा से अधिक थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथक मताधिकार की जगह संयुक्त मताधिकार होने से संपूर्ण दलित समाज भारतीय समाज की मुख्य धारा का अंग बना रहा तो भारतीय समाज की एकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संविधान सभा में सहमति से आजाद भारत की संसद में और सरकारी सेवाओं में आबादी के अनुपात में दलित वर्गों को आरक्षण का अधिकार जिस आसानी से प्राप्त हुआ, उसकी बुनियाद तो पूना पैक्ट में ही पड़ चुकी थी। अंबेडकर की तर्क क्षमता और दलित वर्गों के हित के लिए अड़ियल रुख अपनाने की शक्ति तथा गांधी की नैतिक शक्ति से निर्माण किए गए वातावरण ने इस फल को प्रदान किया, इसमें कोई शक नहीं। इस घटना के बाद गांधी को भी सवर्ण शक्ति के सामने डट जाने की अद्भुत शक्ति मिली, जो गांधी प्रारंभ में चाहे किन्हीं कारणों से छुआछूत मिटाने को मुख्य मुद्दा बनाने से थोड़ा कन्नी काटते थे, उन्होंने इस कार्यक्रम को स्वराज्य के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा बना लिया। गांधी जी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य छुआछूत का संपूर्ण खात्मा था। जेल से रिहा होते ही गांधी जी ने संघ के कार्यकर्ताओं से पूछा, क्या संघ के कार्यकर्ता सचमुच अपने दिल से छुआछूत के पाप को निकाल चुके हैं? एक सदस्य ने पूछा, आपकी इस संबंध में कसौटी क्या है? गांधी जी ने कहा, क्या आप विवाहित हैं? उत्तर था हाँ। इस पर गांधी जी ने कहा, तुम्हारे पास कोई अविवाहित पुत्र अथवा पुत्री होगी तो उसमें से किसी एक पुत्र या पुत्री के लिए हरिजन बहू या दामाद ढूंढो। तुम्हारे संस्कार के लिए मेरे पास सिर्फ बधाई का तार भेजने के अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद ही उन्होंने अपने आश्रम के प्रवासी प्रोफेसर, जो जाति से ब्राह्मण थे, की पुत्री का विवाह आश्रमवासी हरिजन के पुत्र से, जो उन्हीं का शिष्य था, कराया तथा संकल्प लिया कि वे केवल उन्हीं शादियों को आशीर्वाद देंगे जिसमें एक पक्ष हरिजन होगा। उन्होंने 1935 में एक संदेश भेजा। स्वर्गीय लाला लाजपत राय द्वारा संस्थापित अखिल भारतीय अछूतोद्धार समिति ने पंजाब केसरी की पुण्य स्मृति में 11 नवंबर से 17 नवंबर तक हरिजन सप्ताह मनाने का निश्चय किया है। एक, महात्मा गांधी द लाइट फ्रेज वॉल्यूम फर्स्ट कॉमा बुक फर्स्ट पृष्ठ संख्या 60। दो, संपूर्ण गांधी वांग्मय कॉमा खंड 62 कॉमा पृष्ठ संख्या 94। पृष्ठ संख्या 86। स्थानीय समितियां जो कार्यक्रम निश्चित करेंगी, वे तो होंगे ही, इसके अलावा निम्न कार्य भी होंगे। 11 नवंबर की प्रभात फेरी में ऐसे गीत गाना जिसमें हरिजनों के साथ भाई बहनों जैसा व्यवहार करने की आवश्यकता बताई गई हो। 12 नवंबर को पुरोहित और पंडित हरिजन हलकों में रामायण गीता भागवत सुनाएं। 13 नवंबर को हरिजन बस्तियों या मंदिरों में पंचायतों की बैठकें हों जिसमें हरिजनों को भी आमंत्रित किया जाए और अस्पृश्यता निवारण पर बल दिया। 14 नवंबर सवर्ण घरों की स्त्रियां हरिजन घरों में जाकर दलित महिलाओं से मिलें। 15 नवंबर बाल मेला जहां हरिजन माताओं को बच्चों के साथ पाठशाला और मंदिरों में बुलाया जाए आदि। सामाजिक समरसता की दृष्टि से गांधी के यह सभी कार्य अनुकरणीय थे, किंतु अंबेडकर और गांधी के रिश्ते इसके बावजूद ठीक नहीं थे। अंबेडकर को हरिजन शब्द से चिढ़ थी। वे कहते थे कि वर्ण के बारे में उनके विचार गांधी से मेल नहीं खाते थे। उन्होंने जाति को प्रोत्साहित करने वाले शास्त्रों के ही खिलाफ बगावत की बात कही और उनकी उपस्थिति में मनुस्मृति जलाई गई। गांधी जी ने 1935 में एक व्यक्ति को उत्तर देते हुए कहा, आदमी अपने गुजारे के लिए अपने बाप दादाओं का ही पेशा करे, इसी का नाम वर्ण धर्म है। यह इंसान की कारीगरी नहीं, कुदरत का अटल कानून है। अंबेडकर का कहना था, यह इंसान कृत है, इसे कुदरती कहने से कोई इसके आगे नहीं सोचेगा। गांधी ने कहा, अछूत को ज्ञान पाने का उतना ही अधिकार है जितना ब्राह्मण को। सुख सुविधा सच्ची आध्यात्मिकता की तलाश के लिए वर्ण सबसे बढ़िया वीणा है। आध्यात्मिक तलाश सच्ची होती है। अंबेडकर ने उन पर हमला किया। गांधी अछूत और सवर्णों को बताना चाहते हैं कि वे आधुनिक मनु हैं। फिर से वे हिंदुस्तान को उसके पूर्व निर्धारित आदर्शों पर चलने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, किंतु इससे दलितों की दशा नहीं सुधरी। केवल अछूत ही हरिजन हो गए, सवर्णों का कोई तबका हरिजन नहीं हुआ। सिर्फ अछूत या शूद्र या अवर्ण ही हरिजन हुए। अन्य वर्णों के लोग हरिजन क्यों नहीं हुए? क्या अछूत हरिजन घोषित करने से अछूत नहीं रहेगा? क्या मैला नहीं उठाएगा, झाड़ू नहीं लगाएगा? क्या अन्य वर्ण वाले उसे गले लगा लेंगे? हिंदू समाज उसे सवर्ण मान लेगा? क्या उसे सामाजिक समता का अधिकार मिल जाएगा? हरिजन तो सभी हैं, लेकिन गांधी ने हरिजन को भी भंगी बना डाला। किसी सवर्ण ने हरिजन माना, सभी ने भंगी महतर माना, यह सोचना फरेब है। वे तो आयरलैंड के देशभक्त डेनियल कॉनल के शब्दों को दोहरा रहे थे कि कोई मनुष्य अपमानित होकर धन्यवाद नहीं दे सकता, कोई राष्ट्र अपनी स्वाधीनता खोकर धन्यवाद नहीं दे सकता, कोई नारी अपना शील भंग होने पर धन्यवाद नहीं देती। फिर अछूत कैसे केवल नाम के लिए हरिजन कहलाने पर गांधी को धन्यवाद कर सकता है? क्या ओस की बूंदों से उसकी प्यास बुझ सकती है? वह सवर्ण जाति की पाशविकता का शिकार है। इस तरह 1932 के पूना पैक्ट के बाद भी दोनों के रिश्ते मधुर नहीं हुए। 14 नवंबर 1935 को सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र का उत्तर देते हुए वे कहते हैं, अंबेडकर के नाम लिखा तुम्हारा पत्र पूरी तरह पढ़ गया। यह अकाट्य है, मगर इस समय उन पर इसका कुछ भी असर नहीं हो सकता। एक, महात्मा तेंदुलकर वॉल्यूम 3, कॉमा पृष्ठ संख्या 122। पृष्ठ संख्या 87। मेरी निंदा किए बिना उनसे रहा ही नहीं जा सकता, फिर तुम्हें वे कैसे छोड़ सकते हैं? लंदन की तरह यहाँ भी उनके पीछे अनेक शक्तियाँ काम कर रही हैं। दुख इतना ही है कि उनकी धमकियों से डरकर इस बात को बहुत बड़ा रूप दे दिया है। इसकी भी चिंता नहीं, परंतु उसका सदुपयोग होने के बदले दुरुपयोग हो रहा है। अस्पृश्यता को मिटाने का जोरों से प्रयत्न करने के बदले लोग उनकी खुशामद कर रहे हैं। खैर, हमें इसी वातावरण में काम करना है, जहाँ देखो वहीं भय और दुर्बलता के दर्शन होते हैं। इस तरह पूना पैक्ट के बावजूद दोनों में एकता न होने का मजबूत कारण राजनीति भी थी। गांधी जी ने अपनी संपूर्ण शक्ति ग्रामीण उत्थान और हरिजन उत्थान में लगा दी। डॉक्टर अंबेडकर उनसे गांव मिलने भी गए। हरिजन सेवक संघ का देशव्यापी कार्य प्रारंभ हो गया था। त्रिवेंद्रम के एक मंदिर में हरिजन प्रवेश एक गंभीर मुद्दा था। मौके का लाभ उठाकर ईसाई मिशनरी त्रिवेंद्रम में हरिजनों को ईसाई बनाने लगी। गांधी जी से इन लोगों का गहरा विवाद हुआ। बंगलौर में दक्षिण भारत के हरिजनों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा, हमारा ब्रैकेट में हरिजन परिष्कार ब्रैकेट क्लोज आंदोलन धार्मिक है और राजनैतिक धरातल से अलग है। हमारी संख्या थोड़ी है, हजारों लोग जुटते हैं, लेकिन वे केवल प्रस्ताव पास करते हैं। छुआछूत के प्रश्न पर जहाँ तक संभव हो इसका सवाल ही नहीं उठता। इसे तो जड़ मूल से जाना ही होगा, मंदिरों से और जहाँ कहीं भी है। इसीलिए जितने लोगों ने ट्रावणकोर में प्रस्ताव पास किया है, यदि उनमें से संकल्प शक्ति है तो कोई ताकत उनके लिए मंदिरों के दरवाजे बंद नहीं रख सकती। जो लोग भी हरिजनों के बीच में काम कर रहे हैं, उन्हें हमारे हरिजनों के बारे में सच्चे भाव से अवगत कराना चाहिए। यहाँ उपस्थित तमाम लोग अपने को हरिजन के सुख और दुख से नहीं जोड़ते। वस्तुतः हमसे हरिजन वर्ग निश्चित परिणाम चाहता है। वे हिंदू की क्षमता की सतह तक उठना चाहते हैं। इसीलिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वे स्वेच्छा से 100% हरिजन बन जाएं। यदि छुआछूत खत्म नहीं हुई, तो हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा धर्म जो अपने ही में जन्मे व्यक्ति को मानव नहीं समझता, वह धर्म नष्ट हो जाए। यदि यह मानवता का दाग खत्म नहीं होता, तो इसे नष्ट हो जाना चाहिए। इसके लिए हमें हर अंश में हरिजन होने की जरूरत है। इसके माने, जब उन्हें दुख पहुंचे, तो हमें भी दुखी होना चाहिए, और उन्हें जो भी दुख पहुंचाए, उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें कभी न कहा जाए कि उनके दुख का कारण उनका धर्म है। हम कहें कि हमारे ऊपर उनका जो ऋण है उसका एक हिस्सा हम उतार देना चाहते हैं। हमें अपने से हर संध्या और हर सुबह पूछना चाहिए कि क्या हमने उस ऋण का कोई भी अंश उतारा है। जब तक हम ऐसा नहीं करते, हमारे सारे प्रस्ताव व्यर्थ हैं। उन्होंने डॉक्टर जॉन मोट को उत्तर देते हुए कहा कि छुआछूत का प्रश्न हिंदुत्व के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। यदि यह समाप्त नहीं हुआ, तो हिंदुत्व के साथ हिंदुस्तान भी नष्ट हो जाएगा, और यदि छुआछूत समाप्त हो गया, तो भारत के पास विश्व को संदेश देने के लिए कुछ हो जाएगा। डॉक्टर मोट ने उनसे कहा, सारी दुनिया में खबर छपी है कि डॉक्टर अंबेडकर 5 करोड़ लोगों को उसके हाथ सुपुर्द कर सकते हैं यदि कोई धर्म उन्हें स्वीकार कर ले। एक, महात्मा तेंदुलकर वॉल्यूम 4 कॉमा पृष्ठ संख्या 80। दो, वही कॉमा पृष्ठ संख्या 99। पृष्ठ संख्या 88। गांधी ने कहा, जहां तक अंबेडकर के इस ख्याल का सवाल है, आप पूरे आंदोलन को निरपेक्ष भाव तथा शांत चित्त होकर देखें। क्या डॉक्टर अंबेडकर की अपील का कोई उत्तर है? जब वे आपके यहाँ जाएं, तो आपकी अंतरात्मा जो कहे वह करें। किंतु आज यह सोच पाना कठिन हो रहा है कि अंबेडकर के इस कथन का अर्थ क्या है। फिर गांधी ने कहा, भारत की आम जनता की गरीबी हमारी परेशानी का कारण है, और जिस रूप में बड़े लोगों ने गरीबों, खास तौर पर हरिजनों की उपेक्षा की है, वह बहुत परेशानी का कारण है। हम एक बहुत बड़े धर्म के रक्षक हैं, फिर भी हम एक शर्मनाक अपराध करने के दोषी भी हैं। जब डॉक्टर मोट से उनका संवाद चल रहा था, तभी एक अच्छी खबर आई कि ट्रावर कोर के मंदिर के द्वार वहां के शासकों ने हरिजनों के लिए खोल दिए। गांधी ने कहा, ऐसा महिलाओं की शक्ति से हुआ है। ऊंची जाति के बहुसंख्यक लोगों ने ऐसा करने में पूरा सहयोग किया है। यह तो अहिंसा की शक्ति का सबसे बड़ा फल है। लेकिन उन्होंने आगे कहा, मंदिर के द्वार खुल जाना ही संपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा, आदर्श भंगी तो ब्राह्मण से भी आगे है। एक ब्राह्मण के बिना भंगी का अस्तित्व संभव नहीं है। अंतिम के बिना पहले का अस्तित्व नहीं है। भंगी समाज के लिए वह काम करता है जो माँ अपने बच्चे के लिए करती है। माँ बेटे की गंदगी साफ करती है और उसे स्वस्थ रखती है। उसी तरह भंगी पूरी आबादी की गंदगी साफ कर उसे स्वस्थ रखता है। ब्राह्मण का दायित्व है वह आत्मा की शुद्धि का काम करे और भंगी समाज के शरीर का। किंतु व्यवहार में ब्राह्मण अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, जबकि भंगी अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं। भंगी तो सभी सेवाओं की बुनियाद में है। हमारे समाज ने भंगी को निम्न कोटि में बिठाकर दुखदायी काम किया है। यदि हम भंगी को ब्राह्मण के बराबर का दर्जा दें, तो हमारा समाज, उसकी व्यवस्था, उसकी तस्वीर पूरी तरह स्वच्छ हो जाएगी। हम अपने आप बीमारियों को नियंत्रित करने से मुक्त हो जाएंगे। हमें अप्पा साहब पटवर्धन जैसे लोगों की सेना बनानी होगी जो स्वेच्छया अपने को भंगी मानते हैं। इस तरह उस दौर में गांधी ने हरिजन सेवा, भंगी उद्धार के लिए सवर्ण लोगों में एक बड़ी फौज खड़ी की। डॉक्टर अंबेडकर इसे ग्राह्य नहीं कर पाते थे। अंबेडकर का रास्ता टकराव का था, गांधी का रास्ता हृदय परिवर्तन द्वारा समाज में स्थायित्व कायम कर भाईचारा का वातावरण बनाने का था। 1936 में पंजाब के जातिपाती तोड़ेक मंडल ने डॉक्टर अंबेडकर को भाषण के लिए बुलाया। यह अध्यक्षीय भाषण हिंदू धर्म पर गंभीर हमला था। उन्होंने उसमें लिखा था, हिंदू रूप में उनका अंतिम भाषण है। आयोजकों ने इस अंश को निकालने की मांग की, किंतु अंबेडकर डटे रहे और यह सम्मेलन हुआ ही नहीं। किंतु उन्होंने अपने भाषण को 8 आने कीमत पर छपवा दिया। गांधी ने इसे पढ़ा और अंबेडकर को सलाह दी कि पुस्तक की कीमत घटाकर 4 आने कर दें, जिससे काफी लोग पढ़ सकें। उन्होंने कहा, कोई समाज सुधारक इस पुस्तक को पढ़े बिना नहीं रह सकता। अंधविश्वासियों को इससे सबक मिलेगी। इस पर घोर आपत्तियां हैं, इसीलिए इसे पढ़ना चाहिए। एक, अंबेडकर सोर्स बुक 1, कॉमा पृष्ठ संख्या 81। पृष्ठ संख्या 89। डॉक्टर अंबेडकर हिंदुत्व के लिए चुनौती हैं। हिंदुत्व में पले उसी वातावरण में पढ़े, किंतु सवर्ण हिंदुओं द्वारा उन पर और उनके साथियों पर होने वाले अत्याचार से वे इतने कुंठाग्रस्त हुए कि वे न केवल सवर्ण हिंदुओं को छोड़ना चाहते हैं, बल्कि समस्त हिंदुत्व की धारा को भी, जो उनकी सम्मिलित धरोहर रही है। वे अंबेडकर के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हैं, किंतु 11 जुलाई 1936 को हरिजन पत्रिका में एक लेख लिखकर मनुस्मृति के जिन छंदों का अंबेडकर ने उल्लेख किया, उस पर अपनी टिप्पणी सुरक्षित रख ली। किंतु पुनः 18 जुलाई 1936 को गांधी ने हरिजन में लिखे अपने लेख में कहा, वेद, उपनिषद, स्मृति और पुराण, यहाँ तक कि रामायण भी महाभारत आदि हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, सभी ने पढ़ी है। समय ने इस सब में कुछ जोड़ ही किया है। इसके माने यह नहीं कि सब कुछ लिखा हुआ अथवा हस्तलिपि धर्म ग्रंथ है। स्मृति के जिन सूत्रों का उल्लेख अंबेडकर कर रहे हैं, वे अधिकृत छंद नहीं हैं। कोई भी वस्तु ईश्वर के शब्द नहीं हो सकते, यदि उनका आध्यात्मिक और तार्किक परीक्षण न किया गया हो। कोई धर्म की बात केवल कहने से नहीं होती, यदि उसकी अनुमति संत और महात्माओं ने अपनी निजी साधना से न प्राप्त कर ली हो। सभी धर्म ग्रंथों के भाष्यकार भुला दिए जाएंगे। भावी पीढ़ी महात्माओं की स्वयं प्रेरणा से उत्पन्न बातों को ही शिरोधार्य करेगी। जाति को धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। जाति एक प्रचलन है जिसके मूल में नहीं जाना चाहता, किंतु मैं जानता हूँ कि आध्यात्मिक और राष्ट्रीय उन्नति के लिए यह घातक है। वर्ण और आश्रम संस्थाएं हैं जिनका जाति से कोई नाता नहीं है। वर्ण का कानून सिखाता है कि अपने पूर्वजों के परंपरागत पेशे को अपनाकर हम अपनी रोटी कमा सकें। यह हमें हमारे अधिकार का ही नहीं, कर्तव्य का भी ज्ञान कराता है। यह मानवता के कल्याण के लिए उपयोगी है। इसमें कोई बहुत ऊंचा नहीं, कोई नीच नहीं है। सभी अच्छे कानून सम्मत और सतह पर बराबर हैं। एक आध्यात्मिक एवं कर्मकांडी ब्राह्मण और भंगी दोनों ईश्वर के यहाँ बराबरी का सम्मान पाने के हकदार हैं, और एक समय में मनुष्य रूप में भी बराबरी का दर्जा प्राप्त थे। अपनी आजीविका के दोनों हकदार थे, किंतु उससे अधिक नहीं। वर्ण के कानून को उसका इस्तेमाल करने वालों के सतही तौर तरीके से गलत और अनुचित नहीं कहना चाहिए। वे तो खुले रूप से इसका अतिक्रमण कर रहे हैं। वर्ण के कानून में एक वर्ण को दूसरे के ऊपर या नीचे रखना वर्ण के कानूनों का निषेध है। वर्ण के कानून में छुआछूत के पालन का कोई नियम नहीं है। हिंदुत्व का मूल तत्व एक और केवल एक में सच्चाई के साथ आस्था रखने में है, और अहिंसा में मूलभूत निष्ठा ही मानव की एकता का सार है। गांधी ने कहा, अंबेडकर की सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्होंने उन पुस्तकों को उद्धृत किया है जिनकी प्रामाणिकता संदेहास्पद है, तथा स्तरहीन हिंदू जिन्होंने गलत ढंग से बातों को उद्धृत किया है। उन्हीं को आधार बनाकर अंबेडकर ने अपनी स्थापना खड़ी की है। विद्वान डॉक्टर ने अपने विद्वत्तापूर्ण संबोधन में अपने पक्ष को जरूरत से ज्यादा दलितों के साथ पेश किया है। कोई भी धर्म जिसके प्रचारक चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, तिरुवल्लुवर, रामकृष्ण परमहंस, राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर और स्वामी विवेकानंद जैसे लोग रहे हों, इनमें से कहीं और का उल्लेख किया जा सकता है? क्या किसी ऐसे धर्म का प्रचार कर सकते हैं जिसका उल्लेख डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संबोधन में किया है? कोई भी धर्म की कसौटी उसके घटिया दृष्टांतों से नहीं हो सकती, किंतु उसकी कसौटी तो उसने जो अधिकतम अच्छी चीजें पैदा की हैं वह होगी। वही और केवल एकमात्र वही धर्म को नापने की तुला होगी।